गाथा में आप सुन रहे हैं अली हसन कमालपुरी की लिखी कहानी नागिन का इश्क। लीजिए सुनिए इस कहानी का पहला भाग। सुबह के 7 बज रहे थे। समस्तीपुर जंक्शन पर पटना से आने वाली ट्रेन से उतरकर मैं स्टेशन के मेन गेट की तरफ जा रहा था कि अचानक मेरी मुलाकात सरदार ज्ञान सिंह से हो गई। वो मुझे देखते ही बड़ी गर्मजोशी से मुझसे लिपट गया। एक अरसे बाद अपने प्यारे दोस्त से मिलकर मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसकी बिगड़ी हुई सेहत देखकर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। मैंने उसके जिस्म पर एक गहरी सी निगाह डाली और 5 साल पहले के ज्ञान सिंह के बारे में सोचने लगा। तब वह बहुत स्मार्ट और तंदुरुस्त नौजवान हुआ करता था। उसके चेहरे पर सुर्खी और चमक हुआ करती थी, लेकिन अब उसमें जमीन और आसमान का फर्क पैदा हो गया था। चेहरा सूखा और मुरझाया हुआ, आंखें धसी हुई, कमजोर जिस्म। खास बात यह थी कि उसके चेहरे और जिस्म पर जगह जगह हल्के काले धब्बे नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे खून में खराबी पैदा हो गई हो। मैंने चिंता भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा, ज्ञान सिंह, तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई है?
बड़ी ही लंबी कहानी है दोस्त, कुछ बताओ भी तो मेरे यार, क्या हुआ है तुम्हें?
सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे, उसने जवाब दिया। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी और जल्द ही दम तोड़ गई। वह मेरा हाथ थामे रिफ्रेशमेंट रूम की तरफ बढ़ता हुआ बोला, चलो वहीं बैठकर बातें होंगी। हम कैफे के अंदर एक कोने की मेज के आमने सामने जा बैठे। कुछ देर में ही वेटर ने चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख दी। मैंने चाय की प्याली उठाते हुए कहा, चलो अब जल्दी से अपने इश्क की दास्तां सुना डालो कि तुमने किसके इश्क में अपना हुलिया बिगाड़ रखा है। ज्ञान सिंह ने चाय की सिप लेते हुए बात शुरू की। तुमको तो याद होगा कि मुझको नींद में चलने की आदत है। हाँ हाँ बिल्कुल याद है, मैंने जवाब दिया और जहन के पर्दे पर गुजरे हुए कल की फिल्म तेजी से चलने लगी। ये उन दिनों की बात है जब हम दोनों बरौनी रेलवे स्टेशन पर एक साथ अपॉइंट हुए थे, फिर एक ही क्वार्टर में लगातार 2 साल तक साथ रहे थे। वो अक्सर रात को गहरी नींद में उठ खड़ा होता, इसी हालत में कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता। नींद में ही वो दूर दूर तक चला जाता। कई बार उसे खतरनाक हालात से भी गुजरना पड़ा। यही वजह थी कि मुझे उसका खास ख्याल रखना पड़ता था। बाद में मेरा तबादला महेंद्रू घाट हो गया, इस तरह से हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। हाँ तो अब पूरी बात सुनो, अचानक ही ज्ञान सिंह की आवाज मेरे कानों तक पहुंची और मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गया। वो बता रहा था, 2 बरस पहले बरौनी जंक्शन से जब मेरा ट्रांसफर समस्तीपुर हुआ तो मैं यहां आकर क्वार्टर में अकेला रहने लगा। आज की तरह ही उन दिनों भी मेरी पत्नी पंजाब में मेरे परिवार के साथ ही रहती थी। समस्तीपुर आने के बाद भी मैं अक्सर ही नींद की हालत में घर से बाहर निकल जाता। जब नींद टूटती तो ज्यादातर खुद को रात के सन्नाटे में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पाता, जो यहां से तकरीबन 1 मील की दूरी पर उत्तर दिशा की तरफ है। ज्ञान सिंह ने रुककर चाय की चुस्की ली और फिर आगे बताना शुरू किया। मुझे यहां आए हुए 4 महीने ही हुए थे कि एक रात इसी तरह नींद में डूबा हुआ नदी किनारे जा पहुंचा। नींद टूटने पर महसूस हुआ कि कोई पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे झिझोड़ रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो कहीं कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना भ्रम समझकर जहन से निकाल दिया। इसके बावजूद तुझे डर सा लग रहा था। मैं फौरन वहां से भागकर घर आना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। इतना कहने के बाद ज्ञान सिंह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। मैं बेचैनी से उसके बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने आगे बताना शुरू किया। मैं वापस घर आ जाना चाहता था, लेकिन मेरे कदम ठिठक कर रुक गए। मुझसे चंद कदमों की दूरी पर एक बहुत हसीन महजबीन लड़की खड़ी हुई थी। चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई थी। इस सन्नाटी रात में उस लड़की को देखकर मैं हैरान परेशान रह गया। वो हसीन परियों के देश की खूबसूरत राजकुमारी मालूम दे रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में तमाम तरह के खौफ से भरे सवाल उभर रहे थे। मुझे यूं परेशान देखकर उसके होठों पर एक शोक सी मुस्कुराहट मचलने लगी। उसके यूं मुस्कुराने पर मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया। मैंने अपने दिल की धड़कन पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रही हो? वाह, जिसकी मोहब्बत में मैं यहां तक आ पहुंची, उसे खबर ही नहीं है कि मैं कौन हूं। ये कहने के साथ ही वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कुछ ऐसी थी कि यूं लगा कि जैसे बहुत सारे फूल एक बारगी किसी शाख से गिरकर चारों तरफ बिखर गए। मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा तक नहीं, मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मेरी निगाहें उसके खूबसूरत चेहरे पर टिक नहीं पा रही थी। नहीं देखा तो अब देख लो, उसने इस शोखी से कहा कि जैसे चारों तरफ जल तरंग बज उठी हो। उसने कुछ देर बाद कहा, मैंने ही तुम्हें बार बार मौत के मुंह में जाने से रोका है। मैं ही बराबर तुम्हें खतरे में पड़ने से पहले नींद से जगाती हूं, वरना तुम कब का इस नदी की मौजों की आगोश में पहुंच चुके होते। उसकी बात सुनकर मुझे याद आ रहा था कि अक्सर जब मेरी नींद नदी के किनारे टूटती थी तो यूं महसूस हुआ था कि किसी ने मुझे झिझोड़ कर जगा दिया हो। मैंने हकलाते हुए उससे फिर पूछा, आखिर तुम हो कौन? नहीं समझ सके, वो बड़ी ही गंभीर आवाज में बोली, मेरा नाम समूम है, मैं जिन की बेटी हूं। ये सुनते ही डर और खौफ की एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए दिमाग में जाकर जम सी गई। कुछ देर तक मैं यूं खामोश खड़ा रहा, मानो मेरा जिस्म पत्थर का हो गया हो। मैं वहां से भाग भी नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे दोनों पैर जमीन में धस गए हो। मुझे यूं दहशत में देखकर उसने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, डरो नहीं ज्ञान, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। आओ मेरे करीब आ जाओ। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा मिठास थी। यूं लग रहा था जैसे हर लफ्ज से शहद टपक रहा हो। उसकी आवाज में गजब का जादू था। उसमें कुछ ऐसी कशिश थी कि मैं न चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचता चला गया। आंखों को चौंधिया देने वाली उसकी हद दर्जे की खूबसूरती ने मेरे दिमाग से सारे खौफ यूं पिघला दिए थे जैसे सूरज की तेज रोशनी से बर्फ पिघल जाती है। वो सुर्ख और धानी कपड़े पहने मेरे सामने बड़ी मस्ताना अदा के साथ खड़ी थी। उसके रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके होठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसके जिस्म से मदहोश कर देने वाली खुशबू निकल रही थी। इस खुशबू से पूरा माहौल महक उठा था। उसकी मदभरी आंखों का नशा मेरे पूरे वजूद पर हावी होता जा रहा था। मैं उसके करीब खड़ा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उसे अपनी बाहों में भर लूं। अचानक ही मेरे हाथ उसकी तरफ बढ़ गए, लेकिन वो तुरंत ही पीछे हट गई और कहने लगी, ऐसे नहीं, पहले तुम अपने हाथ में पहने हुए इस लोहे के कड़े को बाहर निकालो, वरना मैं तुमसे दूर रहने को मजबूर रहूंगी। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा, उसमें मेरे गुरु का दिया हुआ लोहे का कड़ा पड़ा हुआ था। इसे देते हुए मेरे गुरु ने कहा था कि इसे कभी हाथ से उतारना मत, ये कड़ा तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने गुरु को दिए वचन को मन में दोहराते हुए कहा, नहीं, इस कड़े को मैं अपनी कलाई से अलग नहीं कर सकता। फिर तो तुम बड़े घाटे में रहोगे। उसके माथे पर नाराजगी की एक लकीर उभर आई। तब तो न मैं तुमको मिलूंगी और न ही तुम्हें कुछ और मिलेगा। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो अचानक ही मेरी निगाहों से गायब हो गई। अब वहां मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने चारों तरफ तेजी से निगाह दौड़ाई। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। खौफनाक रात का अंधेरा किसी अजगर की तरह मुंह खोले हर चीज को निगल जाने के लिए बेकरार था। फिर इसके बाद क्या होता है इस कहानी में, ये सुनिए अगले भाग में। सुनते रहिए गाथा रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे थे अली हसन कमालपुरी की लिखी कहानी नागिन का इश्क। आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। कहानी का संपादन कुमार रहमान का। गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शेफाली कपूर ने।